प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मानव जीवन का उच्चतम विकास है प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति। अभी हम संत वाणी में इसी तत्व के संबंध में चर्चा सुन रहे थे। यहाँ जितने भाई बहन हम सत्संग के नाम पर उपस्थित हुए हैं, सभी के जीवन में शांति, स्वाधीनता और सरलता की मांग है। हम सभी को परम शांति चाहिए। हम सभी को जन्म मरण की बाध्यता से मुक्त जीवन चाहिए। और वह जो अमर जीवन होगा, अविनाशी जीवन होगा, उसमें अनंत रस की अभिव्यक्ति चाहिए। ऐसी आवश्यकता मानव मात्र की होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु हम सभी क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति, तीनों प्रकार की शक्तियों को साधन रूपा बनाने के लिए विचार कर रहे हैं। क्रिया शक्ति जो मिली है उसको हम साधन रूप में बदले कैसे, तो जो भी कुछ करना है इस दृष्टि से करना है कि करने के बदले में न करने का जीवन हमें मिल जाए, बिना कुछ किए हम आराम से रह सके। विचार शक्ति का सदुपयोग क्या है कि जीवन की घटनाओं का अध्ययन करने के बाद अपने जाने हुए असत के संग का त्याग कर सकें। जिन्होंने क्रिया शक्ति का सदुपयोग किया, वे सेवा परायण हो गए, कर्तव्य निष्ठ हो गए और उनके प्राप्त बल का सदुपयोग हो गया। जिन्होंने विचार शक्ति का उपयोग किया, वे जानी हुई भूल को करेंगे नहीं, की हुई भूल को दोहराएंगे नहीं। इस व्रत के धारण से उनका जीवन निर्गुण हो गया, वे दोष रहित हो गए। उसी प्रकार भाव शक्ति के सदुपयोग का भी प्रश्न हम लोगों के सामने आता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, बड़ा ही सरस और आवश्यक अंश है भाव शक्ति। श्रद्धा, विश्वास, स्नेह, प्रेम का भाव, निकटवर्ती जन समुदाय के प्रति सहानुभूति, सहयोग, उदारता, यह सब मनुष्य के जीवन की शोभा के रूप में हम लोग पाते हैं। भाव पक्ष का प्रभावी प्रभाव होता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर, कि जब तक उसके जीवन में भाव पक्ष सबल रहता है, सरलता बनी रहती है, उसके व्यक्तित्व का संगठन बना रहता है, भाव विचार और कर्म में एकता रहती है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है वह, विचार पूर्वक कर्म करता है वह, और परिणाम स्वरूप कर्म के क्षेत्र से अलग होने पर अपने आप में शांति पूर्वक रह सकता है। तो संसार में शरीरों को लेकर, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक योग्यता इत्यादि को लेकर जब तक रहने का अवसर मिले अपने को, तब तक हम विचार पूर्वक से कर्म करें और प्रेम के भाव से भरे हुए कर्म करें। तो भाव से पूरित कर्म जो होते हैं वे पवित्र होते हैं, विचार से प्रकाशित कर्म जो होते हैं वे ममता और कामना के दोष से रहित होते हैं। तो क्रिया शक्ति का पूरा सदुपयोग कर लीजिए, विचार विचार शक्ति का पूरा सदुपयोग कर लीजिए, भाव शक्ति का पूरा सदुपयोग कर लीजिए। तो स्वभाव से जो शक्तियाँ अपने से मिली हुई है उन्हीं के सदुपयोग से फिर शांति परम स्वाधीनता परम प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। और बड़ा सुंदर चित्र देखने को मिलता है, एक ही व्यक्ति है, उसी का अहम रूपी अणु है, उसने अपने से सुख का भोगी स्वीकार किया, तो सुख भोगने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगा रहता है, अनेक प्रयासों में लगा रहता है। और सुख भोग का विधान ऐसा है कि वो किसी प्रकार का सुख लेना पसंद करेगा उसको दुख में सहना पड़ेगा। जहाँ सही सृष्टि के किसी भी अंश का सुखद संपर्क अपने को पसंद आ गया कि उस परिवर्तनशील नाशवान परिस्थिति का एक प्रभाव अपने में अंकित हो जाता है, तो नाशवान है उसका नाश हो जाएगा, परिवर्तनशील है वह परिवर्तित हो जाएगा। तो वर्तमान क्षण में उसका अभाव हो गया, आधा घंटा पहले जो था अब नहीं है, दो मिनट पहले जो था अब नहीं है, तो परिस्थिति बदल गई, सुख भोगने की सामर्थ्य घट गई, हमारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां शिथिल हो गई और मुझ में उस दृश्य का उस वस्तु का उस व्यक्ति का आकर्षण मात्र रह गया। तो इस प्रकार व्यक्ति अभाव में आबद्ध हो जाता है। जीते हुए सुखों को वर्तमान में याद कर कर इतना दुखी हो जाता है कि वर्तमान में उसके लिए जो अमर जीवन का मार्ग खुला है उसका भी वह कुछ उपयोग नहीं कर सकता। संतजन हम लोगों को सलाह देते हैं, कहते हैं कि देखो तुम ही हो, जब तुमने अपने को सुख का भोगी पसंद किया तो संसार तुमको बड़ा आकर्षक दिखाई देता है, जहाँ देखो वही सुख भोगने की वस्तुएं दिखाई देती हैं और उनके पीछे दौड़ दौड़ करके तुम अपने जीवन के मौलिक तत्वों की ओर से विमुख हो जाते हो, वंचित हो जाते हो। मिल गया सुख तो जड़ता में डूब गए, नहीं मिला सुख तो क्रोध और क्षोभ में डूब गए, बड़ी दुर्दशा हो गई। अब जीना चाहते ही हैं तो जी नहीं सकते और शरीर में बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है, मरना चाहते हैं तो मर नहीं सकते, खाना चाहते हैं तो पचा नहीं सकते, चलना चाहते हैं तो पांव साफ नहीं देते, बोलना चाहते हैं तो गले से ध्वनि नहीं निकलती, ये दशा हो गई, बड़ी दयनीय दशा हो गई। फिर भी मनुष्य मनुष्य है, कितनी भी भूल कर डाले और कैसी भी दयनीय दशा उसकी हो गई हो, उसके भीतर जो ज्ञान के प्रकाश और प्रेम के तत्व के रूप में और अलौकिक तत्व विद्यमान है उनका नाश नहीं होता, तो उसमें चेतना आ जाती है, वो करने लगता है कि संसार के संपर्क से मैंने अपनी दुर्दशा कर ली तो अब मुझे यह नहीं चाहिए, तो उसके भीतर सजगता आ जाती है। तो वही मनुष्य है जिसने अपने को सुख का भोगी कहा तो दुख में फंस गया, वही मनुष्य है जिसने सुख भोग की प्रवृत्तियों का त्याग किया तो परम शांति में स्थित हो गया। तो थोड़ी देर पहले जो कहता था कि मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, त्याग के व्रत को अपनाते ही नाशवान संसार के पीछे मुझे नहीं दौड़ना है, किसी भी सुख प्रवृत्ति में अपने को शामिल नहीं करना है, तो केवल इस निर्णय से ही उसके मस्तिष्क का असंतुलन समाप्त हो जाता है, मस्तिष्क का कम हो जाता है। संकल्प रहित होते ही व्यक्तित्व का सामान्य संतुलन सुरक्षित हो जाता है। उसी में जीवन बड़ा भीतर ही भीतर से अच्छा अच्छा लगने लगता है। निज विवेक के प्रकाश में नाशवान और परिवर्तनशील की ओर से अपने को अलग करते ही उसी व्यक्ति में फिर शांति की अभिव्यक्ति हो जाती है। उस शांति में अगर वह रहना पसंद कर ले तो क्रमशः शांति कारी होते होते तीनों शरीरों से तादात्म्य तोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है और ऐसा संबंध टूटता है, ऐसा टूटता है कि जैसा कभी था ही नहीं। सुख भोग की वासनाओं से भरी हुई सृष्टि है तो संसार बड़ा आकर्षक दिख रहा था। इस वासना के त्याग के बाद विवेक की दृष्टि है तो सारा संसार काल की अग्नि में जलता हुआ दिख रहा था और शांति के गहन होने पर शरीरों से तादात्म्य टूटने पर दृष्टि से संग छूटा नहीं कि सृष्टि लुप्त हो गई। न काल है, न स्थान है, न सीमा है, न शरीर है, न अपने को किसी प्रकार की पराधीनता महसूस होती है, न बेबसी है, न अभाव है। इतनी जल्दी यह बदलता है। मैंने अनुभवी संतों की वाणी में सुना, स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई अविनाशी स्वाधीन परम प्रेम से परिपूर्ण जीवन की मांग अति तीव्र हो जाए तो मांग की तीव्रता में मांग की पूर्ति रूप है। दूसरे संतों की वाणी में मैंने सुना तो जब सुना फूल के तोड़ने में देर लगती है, मृत्युंजय होने में देर नहीं लगती है, जन्म मरण के पार पहुँचने में देर नहीं लगती है। और एक दिन की बात है, स्वामी जी महाराज गंगा में स्नान करके अपने आनंद में बैठे थे, उन सब समय अपनी मस्ती में रहा करते थे, शरीर और संसार से संपर्क उनका तब जुड़ता था जब हम लोग भेद भाड़ करके उनसे कुछ बात करना चाहे, कुछ काम लेना चाहे, कुछ दुख सुनाना चाहे तो नहीं तो वे कहाँ रहते हैं हम लोगों को कुछ पता नहीं। बिल्कुल प्रस्तर मूर्ति की तरह आराम से शरीर जहाँ के तहाँ शांत दिखाई दे रहा है और महाराज अपने पार पहुँच जाते, कहाँ रहते, क्या रहता महाराज। तो एक दिन मैं गई सवेरे सवेरे उनके पास, रोज दिन 10 मिनट का समय मिलता था मुझे अपनी साधना के लिए कुछ बात करने को, तो प्रश्न लिख करके ले जाती थी, सुना देती, जो उत्तर देते महाराज मैं लिख के चली आती। उस दिन गई तो पता नहीं उनके आस पास में इतनी शांति, इतना आनंद छाया हुआ था, मुखमंडल उनका ऐसे आनंद से देविद्यमान हो रहा था। तो मैं चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई पीठ की तरफ, सामने भी नहीं गई। बड़ा आनंद आ रहा था उस दर्शन में, तो दर्शन कर रही थी, समय बीत रहा था, खड़ी देख रही थी कि आज तो समझ में आज का वो ध्यान ही नहीं चूक रहा है, अब तो हमारा समय निकल जाएगा, अब कैसे होगा। तो एकदम सावधान होकर के और यूँ उसकी बजा के करने लगे कि अरे लाली, तुम लोग कहाँ बुद्धि की सीमा में चक्कर काटते रहते हो। अरे भाई, आदमी तो यूँ चुटकियों में स्वाधीन होता है, चुटकियों में। अब हम क्या जाने, हम तो उस समय तक देह के सुख दुख में इतने उलझे हुए थे कि स्वाधीन आदमी कैसा होता है हमको क्या पता। मैं चुपचाप सुनती गई। उसके बाद और अधिक आनंदित होके करते हैं कि क्या कहती थी, तुम बुद्धिमान लोग बुद्धि की सीमा में चक्कर काटते रहते हो। अरे लाली, मैं तो एक क्षण में बुद्धि के पार चला जाता था, प्रबंध है। बुद्धि के पार, बुद्धि क्या है, वो सूक्ष्म शरीर का व्यापार है। जिन्होंने शरीरों की सहायता से किसी भी प्रकार का सुख लेना पसंद नहीं किया, उनके लिए बहुत आसान होता है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों के पार पहुंच जाए। पहुंच जाया करते थे महाराज, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। और दृष्टियों के पार पहुंच जाओ, तीनों शरीरों के पार पहुंच जाओ, तो ना वहाँ शरीर है, ना वहाँ दृष्टियाँ हैं। तो दृष्टियाँ नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है। कितना साफ है। और इस प्रकार से बेदाग बिल्कुल आदमी स्वाधीन होता है कि शरीर की आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति तो कल्पना ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, लेकिन है वो सत्य। और उससे पहले किसी को स्वाधीनता मिल जाए संभव नहीं है। नगर में रहना छोड़ करके निर्जन में रहना आरंभ करो तो निर्जन भी संसार का ही एक रूप है। किसी भी प्रकार वो संबंध जो है वो शरीर का संसार से नहीं टूटेगा। कि महल में से निकाल करके गंगा तट पर बैठा दिया तो काम हो गया, तो वो बात नहीं है। कि महल में से निकाल करके फूस की कुटिया में बैठा दिया तो क्या हो गया, वो बात नहीं बनेगी। शरीर तो संसार में ही रहेगा, चाहे जहाँ भी ले जाओ। संसार की धातुओं से बनी हुई आकृति हमेशा ही संसार में है। अणु परमाणुओं के गठन से एक आकृति बन जाती है, अणु परमाणुओं के विघटन से वह आकृति बिखर जाती है। तो जिन अणु परमाणुओं से स्थूल अणु और सूक्ष्म अणु, जिन अणु परमाणुओं के संगठन से ये दिखाई देने वाली आकृति बन गई, वे संसार के ही अणु परमाणु हैं, वे संसार के पार नहीं जा सकते। इसलिए शरीर को कहीं नहीं जाएगा। किसी भी हालत में रखो और किसी भी स्थान में रखो और किसी भी समय में रखो, वो भौतिक सीमा के भीतर ही रहेगा। लेकिन आपके लिए संभव है कि शरीर के रहते रहते प्राण शक्ति के बचे हुए हालत में भी आप तीनों शरीरों से असंग होकर अपने अमरत्व के आनंद में निवास कर सकें, ये आपके लिए संभव है। कौतूहल वश भी इस सत्य का प्रयोग आप आरंभ करें तो शरीर के नाश होने से पहले अविनाशी जीवन के आनंद को आप अपने में अनुभव करके सदा सदा के लिए कृत कृत्य हो सकते हैं। ऐसे संत जन हुए हैं, अभी भी हैं, पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि यह मानव जीवन का सत्य है। अब भाव पक्ष की बात चल रही थी कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो प्रेम तत्व है, भाव पक्ष है, उसका विशुद्ध रूप जो नित्य और रस प्रदान करने वाला है, उसके लिए आज हम भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं वे क्या करें। तो प्रेम का मिठास आप सभी भाई बहनों के जीवन में है। और किसी को प्रेम से अपने पास रखना भी अच्छा लगता है, किसी के साथ प्रेम पूर्वक बैठकर खाना भी अच्छा लगता है, और किसी के साथ द्वेष पूर्वक अलग होना भी जरूरी मालूम होता है। तो क्या हो गया कि अविनाशी तत्व जो प्रेम के रूप में आपके व्यक्तित्व में विद्यमान है, वह है सुख भोग की तृष्णा से दूषित हो गया, उसमें आसक्ति आ गई। तो प्रेम जब आसक्ति का रूप ले लेता है, हमारी ही भूलों से, सुख भोग की तृष्णा से, ताप से जल जल कर जीवन का जो स्रोत जब सूख जाता है तो व्यक्ति को बाहर से अपने लिए वस्तुओं और व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस होती है। तो भीतर में जीवन का वह जो अनमोल तत्व है प्रेम रस, अलौकिक तत्व है प्रेम रस, शरीरों के नाश होने से भी उसका नाश नहीं होता, ऐसा अनुपम अलौकिक तत्व दे करके जीवन दाता ने हम लोगों को बनाया। मैंने सुख भोग की वासनाओं को उसमें मिश्रित कर दिया तो हम भोग की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते हैं और नाम लेते हैं प्रेम का। तो इसका बड़ा ही बुरा फल ये होता है कि प्रेम अपने विशुद्ध रूप में व्यक्ति को अपने आप में ही कृतिकृत्य करने वाला है, लेकिन जब हम उसको आसक्ति के रूप में बदल देते हैं, दूषित और विकृत कर देते हैं, तो देखे हुए संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं की बड़ा दीनता में फंस जाते हैं। तो हमारे भीतर प्रेम तत्व का नाश नहीं हुआ है, मेरी भूल से वह दूषित हो गया है, विकृत हो गया है। अब क्या करें, तो उसमें से दूषण निकाल दो, विकृति निकाल दो, वो शुद्ध रूप में जब हो जाएगा तो वो ऐसा विलक्षण तत्व है कि स्वयं पहले आपको वो स्वाधीन कर देगा। प्रेम रस का अभाव होता है भीतर तो बाहर से हम वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं, व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिन पर अपना कोई वश न चले उनके पीछे दौड़ना ये प्रेमियों का लक्षण नहीं, समझ में आता है। तो मैं कभी कभी अपने साथ के लोगों को ऐसा कहती कि देखो भाई, सुख भोग की तृष्णा से प्रेम का रस सूख गया, शीतलता की जगह पर उसमें तपन पैदा हो गई, अब तुम हो भूखे प्यासे, जीवन का तत्व तुम्हारे भीतर था उसको विकृत कर देने से तुम अभाव से पीड़ित हो गए और बाहर बाहर दौड़ रहे हो, कौन मुझसे मीठा बोले, कौन मेरा आदर करे, कौन मेरी भूख मिटाए, कौन मुझको सम्मान दे। तो तुम सोच के देखो तो सही, जैसे तुम भूखे प्यासे हो ऐसे ही अनेक मूर्तियां तुम्हारी भूखी प्यासी फिर रही है। तो कोई व्यक्ति मूर्ख पुरुष तुम्हारे सामने बनकर के आया क्या जो तुम्हारे अभाव को मिटा देगा? तुम भी अभाव ग्रस्त हो और दूसरा भी अभाव ग्रस्त है, तो जो अभाव से पीड़ित है एक भिखारी दूसरे भिखारी के आगे झोली फैलाए तो झोली भरेगी क्या? नहीं भरेगी। ये बता दो तो होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए यह कि प्रेम तत्व की अलौकिकता को दृष्टि में रखो और वह तुम्हारे ही व्यक्तित्व में अगर अभिव्यक्त हो गया तो सबसे पहला लक्षण तो ये होगा कि तुम अपने आप में कृतकृत हो जाओगे, अपनी संतुष्टि के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञान के प्रकाश में जिन्होंने शरीरों से तादात्म्य तोड़ लिया वे अपने ही आप में इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि शरीर और संसार की आवश्यकता नहीं रहती है, अपने लिए नहीं रहती है, सेवा के लिए बिचरते हैं। उसी तरह से प्रेमी जन जिनके हृदय में प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति हो गई और उस रस से उनका रोग रोग अप्लावित हो गया, वे अपने आप में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको अपने से भिन्न की आवश्यकता नहीं रहती। तो पहचान क्या है प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति की? कि जिस हृदय में यह तत्व अभिव्यक्त होता है उस व्यक्ति को सबसे पहले सबसे स्वाधीन बना देता है। तो अपने में स्वाधीनता आ जाए तो समझना चाहिए कि अलौकिक तत्वों की अभिव्यक्ति हो गई।
और किसी भी प्रकार की पराधीनता दिखाई दे तो सोच लो कि कुछ और रूप होना होगा उसका, वह शुद्ध प्रेम तो हो ही नहीं सकता। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई, जिस हृदय में प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होती है वह स्वयं अपने आप में सरस हो जाता है, तो वहाँ कोई ममता का दोष नहीं है, कोई कामना का दोष नहीं है। तो प्रेमी कौन होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए? पहला शब्द है प्रेमी होने का। एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। उनको मैंने ये दो चार उपाय बताए तो जाते समय कह के गए कि अभी नहीं मिलूंगा, भगवान से कुछ दिनों के बाद मिलूंगा। तो ये बड़ा भारी शर्त है। अनुपम तत्व है, जिनको मिल गया वे सदा सदा के लिए सिद्ध हो गए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का जो मूल्य है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो पहला शर्त है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो पहला शर्त है कि जिसके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कामना शेष रहेगी, किसी प्रकार की ममता का दोष शेष रहेगा, उसमें पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो प्रेमियों के जीवन की कथा कैसी होती है कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। जो इतने स्वाधीन होते हैं वो सब प्रकार की ममता और कामना से मुक्त होते हैं, उनके हृदय में प्रेम रस की धारा प्रवाहित होती है, जो जन्म जन्मांतर के सब ताप को शीतल कर देती है, जिनका रोम रोम उस रस से पुलकित होता रहता है। और फिर ऐसा मनुष्य जिसने भगवत भक्ति के लिए, अनंत परमात्मा का प्रेमी होने के लिए जगत की वासनाओं का त्याग कर दिया, बड़ी बहादुरी की उसने, देखे हुए संसार को इनकार कर देना और बिना देखे बिना जाने प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेमी हो जाना, मानव जीवन की सबसे बड़ी बहादुरी है। इस बहादुरी पर वे प्रेम स्वरूप परमात्मा अपने को नौछावर कर देते हैं। तो संत कबीर आनंद में मस्त होकर कहते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर। ममता और कामना चली गई ना तो निर्मल हो गया। मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे सहत कबीर कबीर। परमात्मा उस प्रेमी के पीछे पीछे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने सुख का भोग और सुख भोग के त्याग का आनंद सब उसने परम प्रेमी के लिए निर्धारित कर दिया। तो मुझे मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस शर्त को जिन प्रेमियों ने पूरा किया उसके हृदय में प्रेम तत्व पवित्र हो गया। और आप देखेंगे कि पवित्र प्रेम का ग्राहक भी परम स्वाधीन है। और महाराज जी जब मानव जीवन की महिमा बताते हुए आनंद में आ जाते तो कहते कि देखो भाई, सारी सृष्टि में प्रेम का दान केवल तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। पशु पक्षी के जीवन में देह जनित सुख के भोग का त्याग करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। यह मनुष्य ही है जो दिखाई देने वाले जगत की ओर से आंखें बंद कर लेता है, नहीं 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 नहीं, ये सुखद रूप मुझे नहीं चाहिए, और जो बिना देखे परमात्मा को कह देता है, हे प्यारे, यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे को समर्पित है और तुम चाहे जैसे करो वैसे करो, जिस प्रकार से तुमको प्रसन्नता मिले इस जीवन का उपयोग करो, तुम्हारी प्रसन्नता मुझको अभिष्ट है। तो मनुष्य की इस बहादुरी पर परमात्मा भी जाते हैं। महाराज भी कहते कि देखो भाई, इस सृष्टि में प्रेम का दान करने की सामर्थ्य केवल तुम्हारे में है और तुम्हारे हृदय के पवित्र प्रेम का पान करने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में है और किसी में नहीं है। मनुष्य कामनाओं से वासनाओं से भरा हुआ मनुष्य वो तुम्हारे हृदय के पवित्र प्रेम का पान कर ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारे पास आएगा तो मीठी वाणी के साथ तुम्हारी कुछ सामग्री भी मांगेगा। वो तो तुम्हारे पास आएगा तो प्रेम पूर्ण व्यवहार से तुम इतना देना चाहोगे तो उससे कुछ ज्यादा भी वो खींच लेना चाहेगा। अगर वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा एक संकल्प पूरा करेगा तो उसके बदले में वो 10 संकल्प तुमसे पूरा करवाना चाहेगा। इसमें सामर्थ्य कहाँ है? जो तुम्हारी तरह भूखा प्यासा दरिद्र फिर रहा है, वासनाओं से कामनाओं से जला हुआ दुनिया में घूम रहा है, वो तुम्हारे प्रेम का आदर नहीं कर सकेगा। मानव हृदय के प्रेम का आदर तो अकेले व पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, जिसको कि प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये बात समझ में आती है? बहुत नाते रिश्ते बनाए आपने, एक से अनेक किया अपने को, एक भी कुटुम्ब संबंधी रिश्तेदार ऐसा नहीं मिला होगा जो केवल प्रेम से प्रसन्न होगा। प्रेम से बात करोगे तो उसके बाद उसको मीठा ठंडा जल भी चाहिए, बैठने के लिए आसन भी चाहिए, भोजन का समय हो जाए तो खाने को भी चाहिए, मन बहलाने को भी चाहिए, सोने को भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। और अपने घर में कितनी भी तकलीफ में रहता होगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी ही हैसियत का सब सामान चाहेगा और उसमें अगर किसी प्रकार की कमी हो गई तो नाराज होकर चला जाएगा। तो मनुष्य की बड़ी भारी अज्ञानता है कि अपनी दुखी प्यासी जिंदगी को लेकर ऐसे ही कामनाओं वासनाओं से त्रिषित व्यक्तियों से संबंध जोड़ करके अपने को आनंदित करना चाहता है और नाम लेता है कि हम प्रेमी जन हैं। तो ये भूल है। ऐसा विलक्षण ऐसा अलौकिक तत्व जो मानव के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होकर जन्म जन्मान करके सब दुखों का अंत कर देता है, उसको स्वयं अपने आप में भरपूर कर देता है, कृतकृत्य कर देता है, किसी प्रकार की पराधीनता शेष नहीं रहती और ऐसा स्वाधीन जीवन लेकर भक्तजन प्यारे को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि हे प्यारे, यह जीवन रूपी पुष्प तुम्हारे चरणों पर अर्पित है और इससे तुम्हें जैसे प्रसन्नता हो वैसे करो। भक्तमती मीरा जी आनंद में आकर कहती हैं, तो कहती हैं जित बैठाओ तो कहीं बैठो। अब अपना कोई संकल्प नहीं रह गया, अब अपनी कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गई, अपने भीतर कोई कामना शेष नहीं रह गई। जित बैठाओ तो कहीं बैठो, जो देव तो खाऊं दार मरा से आप सामिया ताही मेरन गाऊं। उसी में उनको आनंद आता है, उसी में उनको आनंद आता है। तो ऐसा जो वीर पुरुष है, ऐसा जो वीर भक्त है, जो अपने लिए कुछ न चाहे कुछ न मांगे, अपने पर अपना अधिकार न रखे और उस प्रेमास्पद को प्रेम रस प्रदान करने के लिए ही जो जीता रहे, ऐसे भक्त पर भगवान प्रसन्न होकर के अपनी अमृत वर्षा कर देते हैं, प्रेम के रस से उसको आप्लावित कर देते हैं और जैसे जैसे उस रस की वृद्धि होती जाती है संसार की विस्मृति हो जाती है। मैंने यह देखा है, अनुभवी संत की वाणी में सुना है, उच्च कोटि के भक्तजनों के पास बैठकर देखा है, और जैसे जैसे उन्होंने जीवन के क्रम को बताया कि भाई दूषण को मिटाओ, बुराइयों को छोड़ो, निर्गुण निष्काम होने का पुरुषार्थ करो, प्रेम रस की वृद्धि होती जाती है तो निर्भयता आती है, निश्चिंतता आती है, शरीर और संसार का महत्व खत्म हो जाता है और अपने ही में विद्यमान वह जीवन तत्व अपनी विभूतियों को प्रकाशित करता चला जाता है। आप लोगों में से विश्वास पथ के साधकों को, बहुत से भाई बहनों को यह लगता होगा, सोचते होंगे ऐसा कि मैंने भगवान की भक्ति की है, उनका प्रेमी होना स्वीकार किया है, तो वे जब दर्शन देंगे तो हम समझेंगे कि हमारी भक्ति सिद्ध हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई वो दर्शन दे कि ना दे ये तो उनकी मर्जी पर छोड़ दो। वो भक्त क्या जो भगवान को बाध्य करे कि तुमको दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। वो भी प्रेमी है जो अपना संकल्प रखे कि ऐसी ऐसी मुद्रा में कि मुरली मनोहर बनके, कि धनुषधारी बनके, कि चार भुजा बनके, कि अष्टभुजा बनके, कि सहस्रभुजा बनके आकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो उसका नाम प्रेमी नहीं है जो अपना संकल्प अपने प्रेमास्पद पर लाके तो अपनी मस्ती में आ जाते, अपने प्यारे से गपशप करते करते तो खूब दान कर ताली बजाते और कहते कि जाओ यार तुम भी क्या कहोगे, तुम भी आजाद रहो मैं भी आजाद रहूं। जो भक्तजन होते हैं वे भगवान से अपने किसी संकल्प पूर्ति की बात करते नहीं है कि तुम ऐसा करो, नहीं, तुमको जिसमें आनंद आए सो करो। एक बार एक ब्रजवासी रसिक व्यक्ति ने विचरण करते हुए ब्रज में स्वामी जी महाराज से पूछ लिया कि बाबा जी लाला लाली के प्रति आपके भाव क्या हैं? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया मैं तो उनका फुटबॉल हूँ, लाला लाली का फुटबॉल हूँ, उनके खेलने का खिलौना हूँ मैं। वहाँ आनंद है, फुटबॉल का अपना कोई अस्तित्व नहीं, फुटबॉल का अपना कोई संकल्प नहीं, लाला फेंकते हैं लाली की ओर, लाली खेलती है लाला की ओर, जिधर ठुकरा देते हैं प्यारे प्यारे उधर में चला जाता हूँ। मुझे बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है किस बात के लिए कि लाली ठुकराती है लाला की ओर तो मैं उधर जाता हूँ, वो ठुकराते हैं लाली की ओर तो मैं इधर आता हूँ, तो दोनों की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है, दोनों को मुझे ठुकराने में आनंद आता है, तो मैं तो दोनों को रिझाने का खिलौना हूँ भैया और मैं कुछ नहीं जानता। फिर मुझे अहम शून्य होने का जो परामर्श देना था, प्रेरणा देनी थी, तो उसमें महाराज जी ने एक बार मुझसे कहा कि देखी जी बांस की बनी हुई बांसुरी तुमने देखी है? हाँ महाराज देखी है। संतजन तो चाहते है ना कि ईश्वर में विश्वास करने वाले भाई बहन जो हैं, वे शरीर के नाश होने से पहले ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं, ईश्वर के मिलन का आनंद आ जाए, उस आनंद में वे मस्त हो जाएं, फिर शरीर का नाश कहीं भी होता रहे उनको उसका कुछ आभास न मिले, ऐसा वे चाहते हैं। तो इसी प्रकार की चेष्टा वो मेरे साथ कर रहे थे। पाथे नाम का संकलन जो है वो महाराज जी के सब लिखे गए पत्र है जो उन्होंने मुझको लिखे, उसमें साधन के क्रम के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे जैसे साधक की प्रगति होती जाती है साधना में, स्वामी जी महाराज का संबोधन बदलता गया। आखिर के पत्रों में उन्होंने जगह जगह मुझको संबोधित किया, मेरे प्राण प्यारे की प्यारी मुरलिया। वे चाहते थे कि भगवान की वंशी में बन जाऊं, कैसे अहम शून्य होकर। तो कभी कभी पूछते देवी जी तुमने देखी है बांसुरी? हाँ महाराज देखी है। तो नली उसके भीतर के सब बांस कटे हुए होते हैं कि कौन कौन गुंधा हुआ होता है महाराज, सब कटे हुए होते हैं, सब गांठें कट जाती हैं, तब उसमें से बढ़िया स्वर निकलता है। हमारा जी ऐसे ही होता है। तो नली देखो, अपने को भीतर से खाली कर दो, अहम शून्य हो जाओ, अपना संकल्प रखकर। कोई अहम शून्य हो सकता है क्या जी? तो सुख भोग के संकल्पों को पशु श्रेणी के लिए छोड़ दो। मानव का जीवन आरंभ ही होता है उसके बाद। सुख भोगने के फेर में जो पड़ रहा है उसकी तो मानव संज्ञा आरंभ ही नहीं, वो तो प्राणी की संज्ञा है, वो तो पशु की संज्ञा है, वो तो बहुत नीचे स्तर की बात है। उसको तो बहुत नीचे छोड़ दो, उसको तो पांव के नीचे दबा के उसके ऊपर खड़े हो जाओ। इसलिए ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए, प्रेम के रस से, परम मधुरता से, परम अनंत माधुर्य से भरपूर होने के लिए, तो उसको तो छोड़ दो नीचे। अब जो तुम्हारा शुद्ध रूप है, अपने में क्या मालूम होने लगा? मैं परम शांत हूँ, मैं परम स्वाधीन हूँ, मैं परम प्रेमास्पद प्रेम स्वरूप प्रभु का प्रेमी हूँ। तो ये भी जब तुमको मालूम हो रहा है कि मैं प्रेमी हूँ, इस रूप को भी उस अनंत में समाहित करना है। इसलिए मुरली के समान भीतर से खुश हो जाओ, खाली हो जाओ, अहम शून्य हो जाओ। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जरा सा साहस और करो, मैं कुछ नहीं हूँ। तो जहाँ तुमने अपने को सुना किया कि अनंत की अनंत मधुरता स्वर लहरी बनकर तुम्हारे व्यक्तित्व के माध्यम से तपते हुए संसार में प्रेम रस की वर्षा करने लग जाएंगी, तो ऐसा व्यक्तित्व हम सब भाई बहनों का हो सकता है कि आपकी प्रीत भरी दृष्टि किसी दुखी प्राणी पर पड़ जाए तो उसके दुख का नाश हो जाए। आपकी प्रीत भरी दृष्टि किसी कृषित व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसकी तृष्णा शांत हो जाए। आपकी प्रीत भरी दृष्टि किसी दुखी पर पड़ जाए तो उसके हृदय को सांत्वना मिल जाए। ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है, ऐसे संगठन आज भी समाज में उपस्थित हैं, जिनके पास जाने लगो तो जैसे जैसे निकट जाओ तुम्हारे भीतर का भय मिटता है, दुख मिटता है, तृष्णा मिटती है, प्रश्न खत्म हो जाते हैं, और उनके निकट जाकर बैठते ही ऐसा अनुभव होता है कि जैसे प्रेम की सरसता किसी ने ढाल करके मुझको धर दिया। होता है ऐसा, संभव है ऐसा, होना चाहिए ऐसा। हम सभी भाई बहन उसकी पात्रता को तैयार करें, उतना भर पुरुषार्थ अपने लोगों को करना है, और बाकी सब कुछ उस मंगल में विधान से स्वतः ही होता है। और आज जो साधक मंदिर बैठा है, कल वो परम प्रेम से परिपूर्ण होकर रसमय होकर इस धरती पर विचरण करे, ऐसा संकल्प उस सत्य संकल्प से भी करनी है और हमारा भी है। दोनों का एक समान मिल गया तो काम बन गया। अब शांत हो जाएंगे।